ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। सभा से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, शांति से बैठ जाएं। जो भी बाहर हो और मेरी आवाज सुन पा रहे हो, सब अंदर आ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आध्यात्म की धरा पर हम सब बैठे हैं, शांति वन में आप सब विराजित हैं, और आज का विषय भी हमारा यही है, शांति, एकता और विश्वास में मीडिया की भूमिका। तो आइए इस महत्वपूर्ण सत्र को प्रारंभ करें शांति के साथ, मन को शांति के सागर परमपिता परमात्मा की ओर ले चलें। एक मिनट के लिए जहां भी आप बैठे हैं अपने मन को स्थिर कर लेंगे, शांत कर लेंगे, प्रभु ध्यान की ओर एकाग्र करेंगे। सचमुच ये महामंत्र मन के अनेक बोझों को समाप्त कर तन को स्वस्थ बनाता, मन को सुकून दे देता है। आइए आज के सत्र को हम प्रारंभ करें और शुरुआत करते हैं एक सुंदर गीत के साथ। कहा जाता है कि सुंदर बात सुंदर तरीके से की जाए तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं एक सुंदर शुरुआत करूं, उसके लिए आमंत्रण दे रही हूं। सर्वप्रथम आदरणीय बहन सरला जी को, बहुत सुंदर। हमारी ये भारतीय संस्कृति करतल ध्वनि के साथ हम अभिनंदन करते हैं। आतिथ्य सत्कार हमारे जहन में है, बहुत सुंदर। सरला बहन, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारीज, आपने पब्लिक रिलेशन और एचआरडी मैनेजर के रूप में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में काम किया है। आप भेल मैगजीन की भी एडिटर लंबे अरसे तक रही हैं और साथ ही साथ आप राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट ग्लोबल फोरम फॉर पब्लिक रिलेशन, जो कि स्पिरिचुअल सपोर्ट टू पब्लिक रिलेशन प्रोफेशन वालों के लिए बनाया गया है, तो आज आप हमारे मध्य हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं, आप मीडिया विंग के वाइस चेयरपर्सन भी हैं संस्था में। ये मीडिया विंग का कॉन्फ्रेंस आज प्रारंभ हो रहा है, इसके पीछे इसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको आप हमारे बीच रखेंगे। बहन सरला जी,
ओम शांति। सर्वप्रथम इस दुनिया में बहुत बहुत प्यारे और सबके पसंद स्वयं भगवान, जो इस कॉन्फ्रेंस के स्रोत है और स्वयं हम सबका पिता परमात्मा को और उनके साथ ब्रह्मा बाबा को इस महान विभूतियों के सभा में, इस महान विभूतियों के सभा में उपस्थित होने के लिए हम सब मिलके स्वयं भगवान को वेलकम करेंगे, इनवाइट करेंगे, आह्वान करेंगे, हमारे समक्ष रहे और हमारा जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको संपन्न करें। तो एक हाफ अ मिनट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट वेरी फॉन्डली इनवाइट द सुप्रीम Almighty authority to be with us and to conduct this program and to infuse in us the most important information that is required to transform this world. Therefore, I request all of you, main aap sabko request karungi ki aap शांति से उस पिता परमात्मा को आह्वान कीजिए हमारे समक्ष, सचमुच वो हमारे समक्ष आ जाएंगे। पीसफुली लेट अस वेरी फॉन्डली इनवाइट हिम। Om Shanti. Today we are inaugurating the most important theme for this year of Brahma Kumaris for media, promoting peace, unity एंड ट्रस्ट, इस टॉपिक के ऊपर अराउंड 2-3 डेज वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट सब टॉपिक्स। इस महान सभा में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। In this conference, we are very fortunate that we have the Honorable Governor हमारे समक्ष कुछ ही मिनटों में हमारे समक्ष आने आएंगे, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि भगवान की रचना एक एक इतना सुंदर रचना है और उनसे भी हम बहुत अच्छी अच्छी बात सुनेंगे। Today we are going to just understand about the aim and objective of Brahma Kumaris. इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का एक ही कॉमन एम होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। सबका एम यही होता है कि हम सब सुख शांति में रहे और आनंद से जिए। भगवान हमारा पिता है और उनका भी लक्ष्य यही है। हम उनके संतान के नाते से ही ऑल्सो वॉन्टेड, उनका इच्छा यही है कि हम सब सुख शांति से जिए। और कैसे, तो दुनिया तो ऐसे हालत ऐसे है ही नहीं, तो मीडिया के लक्ष्य भी हर एक यहाँ जो बैठे हैं, वी हैव अ नेम दैट वी हैव टू कीप एवरी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड टू बी हैप्पी। तो भगवान के पास उसका सॉल्यूशन है। हम सब यहाँ जो जीते हैं प्रॉब्लम में हैं, इसलिए हम सुख में नहीं रहे, शांति में नहीं रहे और आनंद बहुत दूर की बात है। तो इसलिए भगवान, हु इज द होस्ट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, ही हैज एन इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन सब जन जन तक ले जाने के लिए भगवान कुछ ऐसे लोगों को, स्पेशल व्यक्तियों को चुन चुन कर यहाँ बुलाया है। वो व्यक्तियाँ कोई और नहीं, आप सब मीडिया वाले। ब्रह्मा कुमार आपके लिए तालियां बजा सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज हैव मेनी डिफरेंट विंग्स, अराउंड 20 विंग्स, एंड मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विंग्स विच सर्व्स द एंटायर 20 विंग्स। तो भगवान को आप इसलिए पसंद है क्योंकि दुनिया में सबको आप बहुत बहुत नजदीक है। छोटे बच्चे से लेकर जाने वाले आदमी को भी आप सब बहुत बहुत समीप है एंड मानते हैं। आप जो बोलते हैं वो मानेंगे, जानेंगे और मानेंगे। इसलिए अगर भगवान की जो इच्छा है इस दुनिया को, एक सुनहरी दुनिया, एक सुख शांति से भरे हुए दुनिया को लाने के और स्थापन करने के लिए, तो उस स्थापना के निमित्त वो बहुत बहुत स्पेशल पर्सनैलिटीज को चुनते हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ, भगवान को आप कुछ एक छोटी सी परसेंटेज में आप सब मिला है। जैसे इस दुनिया में हम अगर इफ यू टेक द हिस्ट्री, कौरव है, पांडव है, पांडव आर ओनली 5% एंड द अदर्स 100%। बट भगवान को, ये कृष्ण जी को, कृष्ण भगवान को ये 5% इज इनफ। 5 पांडव विजयी हो जाते हैं, नॉट द अदर 100%। सो यू आर ऑल इन द काउंट ऑफ दैट 5% हु आर गोइंग टू ब्रिंग ए वेरी रिवोल्यूशनरी क्या स्टेप इन दिस यूनिवर्स एंड ब्रिंग ए वंडरफुल वर्ल्ड विच इज नीडेड फॉर एवरी वन इन दिस वर्ल्ड। सो फॉर दैट भगवान आप सब एक एक को एक प्रतिनिधि बना के उन्हों कुछ समाचार, ये जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, भगवान से स्थापित हुआ यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के आधार से कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स आपसे शेयर करेंगे। शांति कैसे मिले, सुख कैसे मिले और आनंद में कैसे जी सकते हैं, इस विषय में जो मीडिया की इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हम स्पिरिचुअलिटी को जोड़ करके दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअल लेवल में आपको दी जाएगी। आपका प्रोफेशन और स्पिरिचुअलिटी मिला के अगर आपका प्रोफेशन में अगर कुछ चेंज लावे तो दुनिया वालों को बहुत 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 बेनिफिट हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान आपको बुलाया है, आप यहाँ की जो चीजें जो बातें शेयर करते हैं आपसे, आप तो इसमें बहुत बहुत तेज हैं, जो यहाँ से समाचार लेते हैं वो आपके हस्तों से दुनिया को और आपके मन के विचार से दुनिया को दे दीजिए। देखिए दुनिया कैसे आपके द्वारा संपन्न सुसंपन्न दुनिया बन जाते हैं और भगवान की ये जो इच्छा है पूर्ण करने वाले एक एक आप जो भगवान के सुपुत्र कहो या ट्रू चाइल्ड कहो, आप सबको एक एक को मैं बधाई देते हुए और आई एक्सटेंड माई ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर फैमिली मेंबर्स, ए ग्रेट लाइफ अहेड एंड कीप योर प्रोफेशन द स्पिरिचुअल प्रोफेशनल अप्रोच से भगवान को मदद कीजिएगा। तो इस भाव से भावना से आप सबको फिर से प्रणाम और इस उम्मीदों से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया बहन सरला जी। कार्यक्रम को अगले पायदान की ओर ले चलती हूं और हमारे यहां के लिए ये कहूंगी, भारत की संस्कृति कहें सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे पद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारे यहाँ की नींव है, हम यही सोचकर चलते हैं सब सुखी रहें, सब आगे बढ़ें। तो चलिए कदम आगे ले चलते हैं, समाज में शांति एकता और विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका, और उसके लिए मैं आमंत्रण दे रही हूँ समाज के सजग पहरे कलम के धनी प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को। आप देश के प्रख्यात पत्रकार, संपादक, लेखक, अकादमिक प्रबंधक, मीडिया के प्राध्यापक हैं। दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि, स्वदेश, इंफो, india.com, छत्तीसगढ़ के पहले सैटेलाइट चैनल जी 24 घंटे, छत्तीसगढ़ जैसे मीडिया संगठनों में संपादक, समाचार संपादक, कार्यकारी संपादक, इनपुट हेड, एंकर, अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं आपने संभाली हैं, निभाई हैं, रायपुर, बिलासपुर, मुंबई, कितने नाम लो। और आप सबके जाने पहचाने हस्ती प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी हमारे मध्य हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि आप अपनी बात रखें। इस समय आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन MCN UJC भोपाल के रहे, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। तालियों के साथ आपका आह्वान।
ओह ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा की याद में इस सभा का प्रारंभ हुआ है। बहुत सारे मीडिया के साथी देशभर से यहां पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका इस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंच पर आकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं और आप सबके बीच में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप न सिर्फ इस दौर के मीडिया की शक्ति हैं बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना के वाहक भी हैं। जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके प्रथम जो प्रस्तोता आप ही हैं। क्योंकि पत्रकारिता के जो लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, वो दैनिक इतिहास लिख रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, अपने यूट्यूब्स के माध्यम से। कभी कोई इतिहासकार जब 50, 60, 100 सालों के बाद संदर्भ सामग्री की तलाश करेगा तो संदर्भ हम ही होंगे। भारत को देखने की आंखें आप ही हैं, आप ही के माध्यम से भारत का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आज का मंच सिर्फ एक अवसर नहीं कि हम मिलें और मुलाकात करें, ये सिर्फ एक बहुत बड़ी कोशिश है कि जनसंवाद में जो लगे हुए लोग हैं उनका आपस में जो ये बहुत बड़ी ताकत है मीडिया की, उसके बारे में विचार हो। एक ऐसा मंच है जहां से विचार चलते हैं, रुझान बनते हैं और कई बार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रांतियां भी जन्म लेती हैं। ये कहना अतिशयोक्त नहीं है कि हम एक डिजिटल समय में प्रवेश कर चुके हैं। ये डिजिटल समय है जहां पर बहुत सारा कुछ रोज रचा जा रहा है, रोज लाखों करोड़ों चित्र खींचे जा रहे हैं, रोज लाखों करोड़ों वीडियोज बनाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में अखबारों में, सोशल मीडिया में लोग अपने वक्तव्य जारी कर रहे हैं। आज सामान्य व्यक्ति को भी अव्यक्ति का मंच मिला हुआ है और हर व्यक्ति कहीं न कहीं क्रिएटर होने की संभावना से भरा पूरा है। और इस नाते एक अकेला जो मोबाइल फोन है उसने पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने की शक्ति हमको दी है। पर ये जो पहुंच हमारी बनी है लोगों तक, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जब लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि नौजवान हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्हें लाखों करोड़ लोग फॉलो करते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी हर बात, हर विचार, हर मजाक एक संदेश बन जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि नकारात्मकता, फेक न्यूज और ट्रोलिंग की भीड़ में हम सच, संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ खड़े हों। आपका कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं होना चाहिए बल्कि मूल्यवान भी होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। और मैं कहता हूं बार बार अपने मंचों से कि ये 3V का समय है, जिसमें वॉयस से जहां बहुत सारी चीजें सुनी जा रही हैं, लोग शायद पढ़ ना रहे हों उतनी बड़ी संख्या में, पर लोग बड़ी संख्या में सुन रहे हैं। क्योंकि सुनने में सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको टेक्स्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता। आप उस भाषा को जानते नहीं जानते हैं, उस भाषा को पढ़ नहीं सकते, पर आप सुन जरूर सकते हैं। ये वॉयस की ताकत है। इसलिए यह समय 3V का समय है जिसमें वॉयस है, दूसरा वीडियोज हैं, बड़ी संख्या में रोज वीडियोज देखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और तीसरा वर्नाकुलर भारतीय भाषाएं हैं जिनके माध्यम से पूरी दुनिया में हम संवाद कर रहे हैं। लोकल से ग्लोबल की ओर बहुत सारा कंटेंट आज बढ़ रहा है। तमाम युवा कंटेंट क्रिएटर्स रोज कंटेंट बना रहे हैं, मिट्टी की कहानियां कह रहे हैं, अपने गांव घर की कहानियां कह रहे हैं, संस्कृति की बातें बता रहे हैं। बहुत सारे लोकल नायक हैं जिनकी ग्लोबल पहुंच हुई है। और इस नाते यह हमें देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का भारत बना रहे हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ दर्शकों की संख्या नहीं है बल्कि उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो, ये सब एक जिम्मेदारी की जगह है। और आप एक लाउडस्पीकर हो सकते हैं। लाउडस्पीकर सत्य का भी हो सकता है, सच्चाई का भी हो सकता है, झूठ का भी हो सकता है। हम एक लाउडस्पीकर तो हैं, लेकिन ज्ञान के बिना ये जो लाउडस्पीकर है ये गूंज करेगा, वो झूठ की गूंज करेगा, वो किसी काम की नहीं होगी। और इसलिए हमारी चार चुनौतियां सबसे बड़ी इस वक्त हैं। पहली चुनौती है एक विश्वसनीयता का संकट है, भरोसे का संकट है। आज बहुत बड़ा व्याप होने के बावजूद, बहुत बड़ी प्रसार संख्या होने के बावजूद, हर हाथ में मोबाइल होने के बावजूद, हर हाथ में कंटेंट क्रिएशन की संभावना होने के बावजूद, हमारी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं गिर रही है। विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट है। और ये फेक न्यूज, हेट न्यूज और बिना तथ्य की खबरें और सनसनी फैलाने वाली खबरें, ये अभी 10-15 सालों में ज्यादा बढ़ गई। दूसरी बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है सामाजिक विभाजन की चुनौती। लोग बांटने के काम में लगे हुए हैं, ध्रुवीकरण, ट्रोल की संस्कृति, समाज का ताना भाना प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, हम 3 संकल्प लें तो ये ट्रोलिंग की जो समस्या है, ये जो फेक न्यूज की समस्या समाप्त हो जाएगी। पहली बात कहता हूं, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत टाइप करो। दूसरी बात कहता हूं, बुरा मत लाइक करो। तीसरी बात कहता हूं, बुरा मत शेयर करो। बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो। अगर हम बुरा टाइप नहीं करेंगे, बुराई फैलेगी नहीं। बुराई अगर शेयर नहीं करेंगे, बुराई फैलेगी नहीं। और बुरा जो है लाइक नहीं करेंगे तो बुराई फैलेगी नहीं। बुराई को बढ़ाने वाले हम हैं, हमें उसी उसी क्षण रोकना चाहिए, उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप करंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या जो है समाज को बदलाव का एक माध्यम बनाना चाहते हैं, तो आपके सामने 3 विकल्प मैं रखता हूं। माननीय मधुकर जी सामने बैठे, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। 3 विकल्प आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, कि आप कंटेंट क्रिएटर बन जाएं। कंटेंट क्रिएटर जो है वो ट्रेंड को फॉलो करता है, जो चल रहा है उसमें शामिल हो जाता है, भीड़ चाल में चलता है, वो भीड़ में शामिल हो जाता है। दूसरा है कि आप कंटेंट लीडर बने। कंटेंट लीडर का काम होता है वो ट्रेंड को सेट करता है कि किस तरफ जमाना चलेगा, वो ट्रेंड सेट करता है जो कंटेंट लीडर होता है। और तीसरा होता है जो हम सब चाहते हैं कि आप इस सभा में बैठे हुए हर व्यक्ति बने, वो तीसरा है कंटेंट रिफॉर्मर। हमें कंटेंट रिफॉर्मर बनना है जो समाज को दिशा देने का काम करता है, जिसके संवाद से समाज जुड़ता हुआ प्रतीत होता है, जिसके समाज से देश में एकता सद्भाव और शांति की स्थापना होती है, वो कंटेंट रिफॉर्मर का काम है। 3 विकल्प आपके सामने हैं। कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत आसान है, कोई बन सकता है। कंटेंट लीडर बनना भी बहुत आसान है, पर कंटेंट रिफॉर्मर बनना थोड़ा साधना का काम है। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कंटेंट रिफॉर्मर बनिए और आगे बढ़िए। रचनात्मकता के 5 ही सूत्र हैं मित्रों, सिर्फ 5 सूत्र बताना चाहता हूं। रचनात्मकता के बहुत सारे सूत्र नहीं है, 5 सूत्र हैं। पहला, हमको भरोसेमंद जानकारियां देनी है, विश्वसनीय जानकारी देनी है ताकि लोगों का भरोसा हमारे प्रति बने। दूसरा, हमको सकारात्मक संवाद करना है, वो संवाद नहीं करना है जिस समाज में निराशा पैदा हो, समाज में अविश्वास पैदा हो। हमें समाज में सकारात्मक संवाद रचना है। इसके साथ साथ आंचलिक भाषाओं को हमको महत्व देना है, आंचलिक विषयों को अपने गांव गराब सामान्य वर्ग की चीजों को हमें आगे लेके आना है, जनता के मुद्दों को स्वर देना है 4 मुद्दा है, और स्वस्थ हास्य और मानवीय परिवेश, स्वस्थ हास्य के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बात कह सकते हैं, उससे तनाव पैदा नहीं होता। और मुझे लगता है आज मीडिया में 2 तरह के लोग हैं, चाहे मीडिया जोड़िए चाहे सोशल मीडिया जोड़िए, उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, दिनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि आप सब इस सभा में आए हैं, इस महत्वपूर्ण सभा में आप पधारे हैं, जरूर आप जोड़ने वाले लोग हैं, आप तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए आप यहां तक पहुंचे, नहीं तो पहुंचते नहीं। यहां पहुंचना आसान नहीं, साधारण नहीं है। और हम क्योंकि जोड़ने वाली पीढ़ी है, आपके पास सिर्फ कैमरा, रिंग लाइट या सिर्फ आपके पास कलम नहीं है, आपके पास समाज को रोशन करने की रोशनी है। ये विश्वास मैं आप सबको देख के करता हूं, और आप में बदलाव लाने की शक्ति है। आप वो पीढ़ी है जो बिना न्यूज रूम के भी पत्रकार हैं, आप वो हैं जो बिना स्टूडियो के भी कलाकार हैं, और आप वो हैं जो बिना मंच के विचारक हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की। सोशल मीडिया ने आपको शक्ति दी है कि आपको स्टूडियो की आवश्यकता नहीं है, आपको कैमरा की है वो आपके मोबाइल में है। आपको न्यूज रूम के बिना पत्रकार बन सकते हैं, आप स्टूडियो के बिना कलाकार बन सकते हैं, और बिना मंच के आप विचारक बन सकते हैं। आपके विचारों से दुनिया प्रभावित हो सकती है, ये शक्ति हमको नए डिजिटल मीडिया ने दी है, नए डिजिटल शक्ति ने दी है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ इस डिजिटल दुनिया को ज्यादा बेहतर, ज्यादा संवेदनशील और प्रेरणादायक बनाएं। और आज के इस मौके पर मेरी शुभकामनाएं, आप सब यहां पधारे हैं, आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय द्विवेदी जी। मैं कुछ नाम अनाउंस करने जा रही हूँ आज के मंच के वक्ताओं के, सभी ध्यान देंगे ताकि वो गवर्नर साहब के साथ साथ आके मेरे राइट साइड से वो प्रवेश करेंगे और आकर बैठेंगे। उनमें से नाम है भ्राता शांतनु जी, राजयोगी भ्राता करुणा जी, प्रोफेसर मान सिंह परमार जी, आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी और भ्राता गवर्नर साहब जी, माननीय हमारे राज्यपाल महोदय। पर उनके आने के बाद आप मंच पर प्रवेश करेंगे, मेरे राइट साइड से आप लोग एंट्री लेंगे। और मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं, श्रेष्ठ मानव जीवन का आधार शांति, एकता और विश्वास है। समाज के हर प्राणी के हृदय में परस्पर प्रेम हो, स्नेह हो, सद्भाव हो, तभी तो समाज उन्नत बन सकता है। यही आपसी स्नेह सद्भाव, यही शांति, एकता, विश्वास, सौहार्द का वातावरण इसको जन्म देता है। इसके लिए आवश्यक क्या है? वो है हमारा चिंतन श्रेष्ठ। हम तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, आदरणीय राजयोगिनी बहन मोहिनी जी, आप सब का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हमारे स्पीकर्स, हमारे आज के वक्तागण मंच पर आएंगे, करुणा जी, मानसिक परमार जी, भ्राता शांतनु जी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। संजय द्विवेदी जी, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अजय पाठक जी, मेरा सभा से अनुरोध है, एक बार सब खड़े होकर के अपना आदर भाव प्रकट करेंगे। आदर भाव हम प्रकट करते हैं हमारे राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, बहन मोहिनी जी एवं हमारे वक्तागण।
अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल धितर शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय
सभी सभी विराजित होंगे, अपने अपने स्थान को लेंगे और बहन सोहिनी शास्त्री से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। सोहिनी शास्त्री जी और अब मैं बात कह रही थी आप सबसे, सोहिनी शास्त्री जी कदम बढ़ाएंगे। समाज में शांति की धारा फैलाने के लिए मानव के चिंतन को दिशा देनी होगी, अर्थात श्रेष्ठ चिंतन सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करना होगा। ये ऊर्जा जागृत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से होती है। विश्व बंधुत्व का भाव, आपसी प्यार देने का भाव हमारी संस्कृति के कण कण में व्याप्त है। नर से नारायण ये हम देखते हैं, नारी से लक्ष्मी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, आजकल शक्ति के दिन चल रहे हैं वो हम देखते हैं। तो मीडिया इन प्रसारित हुई बातों पर, जो मीडिया प्रसारित करता है वो हमारे मन पर असर डालता है। मीडिया मात्र समाचार देने का साधन नहीं, वह हमारी सोच को गढ़ता है, मन को आकार देता है। इसके लिए ही आज आप सब पधारे हैं और हमारे राज्य के प्रथम नागरिक स्वयं श्री माननीय श्री राज्यपाल महोदय हरिभाऊ बागड़े जी हमारे मध्य हैं। मैं अनुरोध करती हूँ मंच से हरिभाऊ बागड़े जी एवं सभी मंच के वक्ताओं से आएंगे और कैंडल लाइटिंग में अपना योगदान देंगे। सभा में से मैं बुलाना चाहूंगी भ्राता आत्म प्रकाश जी, वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग, भ्राता निकुंज जी नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग, भ्राता कोमल जी एडिटर मधुबन न्यूज चैनल, एवं डॉक्टर ईशा अग्रवाल जी आएंगे, प्रातः शांतनु जी आएंगे और कैंडल लाइटिंग में अपना सहयोग दे, सुशांत भाई जी भी आएंगे अपना कैंडल लाइटिंग में सहयोग देंगे। बाकी कोई भी प्रयास ना करें मंच पर आने का, जिनका नाम लिया गया है वही मंच पर रहेंगे। कैंडल लाइटिंग मंच कर ले, उसके बाद स्पीकर नीचे रखे हुए कैंडल्स को प्रज्वलित कर पाएंगे।
ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ,
ज्योति जगाओ विश्व शांति की ज्योति जगाओ।
इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योति जगाओ
ये दृश्य लग रहा था। आज हमारे मध्य हमारे राज्य के यूं कहूं वरिष्ठ पिता तुल्य माननीय राज्य के प्रथम नागरिक हमारे मध्य हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब छत्र छाया के नीचे आ गए हैं सुरक्षा के। मीडिया का काम तो सुरक्षा देना है, लेकिन मीडिया को भी सुरक्षा देने वाले हैं, उसको भी तो प्यार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उसको भी सुरक्षा देने के लिए हमारे मध्य विराजित हैं राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ बागड़े जी। पुनः एक बार आपका तालियों के द्वारा अभिनंदन। बहनों से अनुरोध है मंच का स्वागत करेंगे बैजेस बुके अंग वस्त्र के साथ। और हम देख रहे हैं सर्वप्रथम ये आतिथ्य सत्कार ले रहे हैं हमारे भ्राता माननीय राज्यपाल महोदय। मंच से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हमारे आदरणीय राजयोगिनी मुख्य प्रशासिका दीदी मोहिनी जी, आप हमारे मध्य हैं, आपका भी तालियों के द्वारा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। भ्राता परमार जी ले रहे हैं अभिनंदन। करुणा माई जी का भी स्वागत हो रहा है। और घड़ियां तो ऐसा लगता है ये प्रेम की सौहार्द की घड़ियां हैं, ये चलती रहे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन समय की सीमाएं होती हैं, हम आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे। स्वागत सत्कार चल रहा है, आप सब तालियां बजाते रहे। मौजूद है, आपका अभिनंदन है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है। मीडिया के लिए अगर मैं दो शब्द कहूं, मीडिया तो दर्पण की भांति है, लेकिन केवल ये दर्पण नहीं, ये तो शिल्पकार भी है, क्योंकि अगर मीडिया हिंसा नकारात्मक संघर्ष ही दिखाए तो समाज में भय और अविश्वास बढ़ेगा, लेकिन यदि मीडिया सकारात्मकता सहयोग और समाधान दिखाएगा तो समाज में विश्वास शांति और एकता आएगी। इसलिए मीडिया एक सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है, दिलों में प्यार भरने का सकारात्मक दिशा देने का भी कार्य करती है। तो बात चल रही है स्वागत के पश्चात, जब तक स्वागत अपनी भावनाओं के साथ न हो तब तक भी आनंद नहीं आता। तो मैं आमंत्रण दे रही हूँ बहन श्वेता सागर, फोक और कथक आर्टिस्ट हैं, आप आगरा से पधारी हैं, आप हमारे बीच नृत्य के द्वारा अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा प्रस्तुत करेंगी बहुत सुंदर भाव, ना राग रहे ना द्वेष रहे, इस गीत पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करेंगी बहन श्वेता सागर जी। तालियों के द्वारा आपका आह्वान किया जा रहा है।
Nadri
आओ इस समाज में सम्मानित जीवन जिए, न राग रहे न द्वेष रहे, सम्मानित जीवन जिए, आओ। यही समय की पुकार है, तो कदम आगे ले जाते हैं। शब्दों के द्वारा अभिनंदन, शब्द बड़ी चीज होते हैं और मीडिया इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। शब्द गहराई तक जाते हैं और वर्षों तक इस संसार में रह जाते हैं, बाकी चीजें रह जाती हैं, भूल जाती हैं, लेकिन शब्द अमित छाप छोड़ते हैं। तो मैं अभिनंदन के लिए आमंत्रण दे रही हूं भ्राता शांतनु जी को। आप राष्ट्रीय संयोजक मीडिया विंग, राजयोग्या एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ब्रह्मा कुमारी, आप संपादक भी हैं, मीडिया ट्रेनर भी हैं, मूल्य निष्ठ पत्रकारिता के संयोजक ब्रह्मा कुमारी बीके आईवीवी ईमेल कम्युनिकेशन के। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आए, सभा का, मंच का प्रेम से अभिनंदन करें।
थोड़ा पीछे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे सभा में, इस राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ बागड़े जी और हमारे साथ में जो मंचासीन वक्तागण और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहने, आप सभी का राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि देश भर से 1,500 से अधिक पत्रकार यहाँ भाग लिए, जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रमोशनल मीडिया से आए हैं। हर साल इस प्रकार के दो कार्यक्रम होते हैं और हमारे जो भी पत्रकार मित्र है, माननीय राज्यपाल महोदय जी से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ये सभी हमारे परिवार है, एक मीडिया परिवार है। जब भी बुलाते हैं सभी, कोई भी बात हो, लेकिन जरूर यहां पहुंच जाते हैं। मैं सभी के लिए एक दो लाइन सुनाना चाहता हूं। रोशन हो दीप जल, दीप दिलों के उजाल के उजाले के, रोशन हो दीप दिलों में उजाले के, मिले सबको संदेश विश्वास और प्यार के। हमारे टॉपिक भी इस प्रकार के है कि विश्व शांति के लिए एकता, विश्वास की बहुत जरूरी है। समाज में अगर शांति स्थापना होगी, विश्वास अर्थात मीडिया वालों के अंदर विश्वसनीयता, जो भी लिखते हैं उसमें विश्वसनीयता हो, तब विश्वास का भी भाव पैदा होगा, एकता भी भाव पैदा होगा। तो इस बात को लेकर 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम पत्रकारों के जो भी हमारे मित्र आए हैं, वो सभी सिर्फ एक समाचार साधन नहीं है। ब्रह्मा कुमारी का मीडिया विंग जो 1980 में स्थापन हुई, उसका यही उद्देश्य है कि हम सिर्फ मीडिया को साधन नहीं समझे, बल्कि ये समाज के सकारात्मक परिवर्तन और नई चेतना जगाने की शक्ति है। मीडिया एक साधना है, एक तपस्या है। लफ्ज अगर सच्चाई के साथ लिखे जाए तो दिलों में मोहब्बत और विश्वास जगाए। हम अपने बीच पधारे माननीय राज्यपाल महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी के प्रमुख मोहिनी दीदी जी पधारे हैं। आप भी हमारे पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी रही, तो इसलिए हम धन्य हैं कि हम आप हमारे बीच में रूहानी पत्रकार स्पिरिचुअल पत्रकार, डिवाइन पत्रकार आप खुद ही है और आप सारे विश्व को यही संदेश देते, शांति, प्रेम, एकता, भाईचारा का संदेश देते हैं। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में करुणा भाई जो 60 सालों से इस संस्था से जुड़े हैं और हमारे संस्था के वो वाइस चेयरमैन ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग के साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी के, तो आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, आप भोपाल से पधारे हैं। आप पूर्व डायरेक्टर जनरल IIMC जो दिल्ली में है उनके आप डायरेक्टर रह चुके हैं। वर्तमान समय भोपाल में HOD पत्रकारिता विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर मानसिंह परमार जी जो पूर्व वाइस चांसलर कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रायपुर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भ्राता डॉक्टर अजीत पाठक जी, नेशनल प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सोहिनी शास्त्री जो 3 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है एस्ट्रोलॉजी में और लाइफ कोच भी है, कोलकाता से पधारे, आपका भी दिल से स्वागत है। हमारे बीच में हमारे सिरोही जिला के कलेक्टर बहन अल्पा चौधरी जी पधारे हैं, आपका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। आप समय प्रति समय हम संस्था से आते रहते हैं और आपका भी दिल से स्वागत है। और हमारे चंद्रकला बहन जी जो इस मंच संचालन करती है, आपका भी स्वागत है। मैं भाई साहब राज्यपाल महोदय जी के लिए ये कहूंगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति सम्मेलन की शोभा और महत्ता को और बढ़ाती है। भ्राता जी का जन्म किसान परिवार में हुआ। ग्रामीण विकास क्षेत्र में आपकी गहरी रुचि रही, सहकारिता आंदोलन से भी जुड़े रहे, 60 दशकों से आप राजनीति से भी जुड़े रहे और कई मंत्री पद पर आप रहे। मुझे जहां तक मालूम है आप करीब 6 बार MLA बने रहे और कई मंत्री पद आपको मिला। और आप इनके बायोडाटा तो बहन जी सुनाएंगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आप सब मेहमान बनकर के आए हैं इस ब्रह्मा कुमारी परिवार में। महक उठाए हर दिल आपके साथ आने से। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले विचार विमर्श से हमें नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। इस महासम्मेलन में समाज में सकारात्मकता और विश्वास जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलो मिलकर ये वादा करें कि आज सभी मीडिया से फैलाएंगे शांति, एकता और प्रेम की रोशनी। आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत और धन्यवाद। ओम शांति।
स्वागत करने वाले शांतनु भाई जी का भी अभिनंदन है। कदम आगे बढ़ाती हूँ और आमंत्रण दूंगी मैं मंच से हमारे बीच विराजित भ्राता करुणा जी, जो कि चेयरपर्सन मीडिया विंग। मैं आपका आमंत्रण आपको देती हूँ। आप मीडिया स्पोक्समैन हैं और सेक्रेटरी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के, चीफ ऑफ मल्टीमीडिया डिवीजन, डायरेक्टर प्रेसिडेंट ग्लोबल IT एंड कम्युनिकेशन। आप सेक्रेटरी FM रेडियो मधुबन। क्या कहूँ और क्या न कहूँ, लेकिन एक मन की बात जो आपके अंदर सदा रहती है वो जरूर मैं कहूंगी कि मीडिया के लिए आपके मन में रहता है। मीडिया के अंदर अगर ईमान है, विश्वास है, सत्यता है, तो मीडिया इस देश को नैया को पार लगा सकती है। मीडिया बहुत दम रखती है, मीडिया ही सब कुछ कर सकती है। मीडिया आगे आए। और अब हम सुनेंगे आप ही के शब्दों में भ्राता करुणा जी, तालियों के द्वारा आपका भी।
सत्यम शिवम सुंदरम। आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी, मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रमुख मोहिनी दीदी जी और तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमारे मीडिया साथी हर साल दो बार हम यहाँ कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, परंतु ये मैं बताना चाहता हूँ कि प्रचार के लिए नहीं, न्यूज के लिए नहीं, परंतु हर मानव को शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव होना चाहिए, तो उसकी अनुभूति के लिए मैं खुद पत्रकारिता में 26 साल रहा हूं, तो मैं जानता हूं कितने आप सभी अपने कार्य में व्यस्त होते जा रहे हैं। ऐसा समय था प्रिंट मीडिया में, परंतु आज हम सबके पास मोबाइल है और न्यूज तो ऐसे चल रहा है जैसे हवा चल रही है। तो किसी पत्रकार से न्यूज उसके बारे में नहीं जाता है तो फोन आता है कि भाई भले रात को 12 बजे हो, अरे उस चैनल में आ रहे हैं, आपका क्या हुआ। आजकल सोशल मीडिया मीडिया कहलाता है, परंतु हम मीडिया वृंदों के लिए तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम ही है। तो उनका जो लक्ष्य है, उनका जो चलाने की जो विधि है, वो जो हमारे पत्रकारिता के जो कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो जनता को एक समाचार देना केवल वो नहीं है, तो ऐसे भी चैनल शुरू किए हैं, हम केवल गुड न्यूज ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि ईश्वर के इस सृष्टि में केवल बुराई होता है, पर ऐसा भी कुछ समय आता है जैसे दिन के बाद रात होती है, तो समय के प्रभाव से इस समय पर जिसको कहा जाता है, कई भविष्यवक्ता कहते हैं कि ये जो 2025 का जो है ये तो बहुत ही बुरा वर्ष है, ऐसा बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पत्रकारों का दोष है कि भाई हम हेडलाइन में आपको जो बहुत बड़ी घटना जो विश्व में होती है वो दिखाते हैं, वो हमारा नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं। तो हो रहा है तो उसको करना ही पड़ता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है। एक समय था, मुझे मालूम है, मैं इन पेपर्स वालों के पास जाता था कि कभी कुछ अच्छे न्यूज डाले, कुछ आध्यात्मिक न्यूज डाले तो नहीं मानते थे, परंतु आज के दिन ऐसा कोई पत्रिका या पब्लिकेशन नहीं है, चैनल नहीं है जिसमें आध्यात्मिक नहीं होता है। तो परिवर्तन तो सब में आई है, तो वैसे मीडिया में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। और हमारे भाई बहने यहाँ इसीलिए आते हैं तो अपने प्रोफेशनल वाले ही है, और कोई नहीं है हमारे साथ, तो हम लोग अपना अनुभव एक दो को बताते हैं और समय अनुसार फिर से वापस हमारे अंदर शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करके और लोगों को। तो सुबह सुबह केवल बुरा ही न्यूज नहीं देना है, कुछ उमंग उल्लास के न्यूज कैसे दिया जाए, तो वो प्रयास करते हैं ताकि जनता को कम से कम मीडिया के ऊपर तो विश्वास रहे। तो आज आप जानते हैं, पॉलिटिक्स हो या कोई और चार तीन विंग्स जो है, प्रभाग है, तो उससे फेथ लोगों से थोड़ा कम होता जा रहा है, परंतु हमारे पत्रकार बंधु जो है तो आशा रखते हैं कि भाई हम इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के प्रयास में पूरा सहयोगी बनेंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया करुणाबाई जी का, जिन्होंने अपनी मन की बात रखी। कैसे मीडिया आगे आए, और अब मैं आगे ले चलती हूं प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार जी की ओर। आप XVC खुशाबाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी रायपुर से हमारे मध्य हैं। आप विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, संस्थापक विभागाध्यक्ष विधि विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय जनसंचार शिक्षक संघ के भी आप संस्थापक रहे हैं। विशेष बात कहूं, आपकी रुचि रही है मीडिया के लिए नई पौध तैयार करने में, तो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं मान सिंह परमार जी आए और अपना विचार आगे रखेंगे हम सबके बीच। और मैं आपसे अनुरोध करती हूं तालियों के द्वारा हम आपका स्वागत करते हैं।
मीडिया महासम्मेलन के आज के हमारे इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री हरिभाव किशन राव बागड़े जी, जो राजस्थान राज्य के माननीय राज्यपाल हैं, आज हमारे बीच में हैं। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई, डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, डॉक्टर अजीत पाठक जी, डॉक्टर एस शास्त्री जी, यहाँ की सिरोही की कलेक्टर महोदया, और शांतनु भाई जो इस पूरे आयोजन के शिल्पकार हैं, तथा हमारी जो बहन संचालन कर रही चंद्रकला दीदी, और सबसे महत्वपूर्ण आप सब लोग जो इस सभागृह में उपस्थित हैं, पत्रकार बंधुओं, मीडिया प्रोफेशनल्स और मीडिया शिक्षक तथा प्रबुद्ध वर्ग। मित्रों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति, एकता और विश्वास ये बहुत आज के समय में चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में यूं कहे हाहाकार मची हुई है, मार काट मची हुई है। दूसरे देश तो देश हमारे भारत के आसपास जो लगे हुए देश हैं, अब मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, परंतु एक देश है जिसमें अभी अभी जेन जी ने मीडिया, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसके माध्यम से एक क्रांति कह सकते हैं या अपना घर जलाना कह सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान नेपाल का हुआ, परंतु सत्ता परिवर्तन भी हुआ। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बहुत सारे हमारे आसपास के देश हैं जिसमें की उथल पुथल मची हुई है। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो शांति है, और शांति से विश्वास जन्म लेता है, और विश्वास से एकता संभव होती है। क्योंकि अगर शांति नहीं होगी तो हम कैसे देश में एकता संभव होगी। वास्तव में देखा जाए तो हमारे यहाँ पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में शांति की बहुत बहुत विस्तार से, हम तो पृथ्वी शांति बोलते हैं, वनस्पति शांति बोलते हैं, हम तो पशु पक्षियों में शांति लाने का प्रयास करते हैं, तो हम तो शांति के दूत हैं, शांति के यूं कहिए कि पूरे विश्व में शांति का संदेश देने वाला देश है। और सबसे बड़ी बात, हमारे भारतीय संविधान में अगर आपने देखा हो तो जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम में एकता है, हम में शांति है और हम में विश्वास है। बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय संविधान में दी गई है, परंतु उसमें शांति भी है, एकता भी है और विश्वास भी है। अगर आप सब लोग प्रस्तावना को ठीक से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें संविधान में शामिल की गई हैं। अब सवाल ये है कि मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, मीडिया को कैसे काम करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो आजादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता संग्राम में हमने एक क्रांति के लिए मीडिया ने काम किया, देश को आजादी दिलाई, और उसके बाद जो दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, जो भूमिका, वो बदली और हमें ये जरूरी था कि देश का विकास कैसे हो, देश में एकता कैसे आए, क्योंकि हम ऐसे बहुत ही बहुभाषी, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे क्या कहिए धर्म, और हम तो अध्यात्म की बात करते हैं यहाँ, तो ऐसे देश में रहते हैं, तो ऐसे समय में ये बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता के बाद मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। मीडिया प्रोफेशनल हो गया, कमीशन से कमीशन पर आ गया, परंतु ये कह सकते हैं कि फिर भी मीडिया ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को विकास की और बढ़ाने में काफी मदद की। और देखिए मित्रों, मीडिया में अपार शक्ति है, नफरत की आग भड़क सकती है तो फिर शांति का दीपक भी मीडिया के माध्यम से जलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम ऋग्वेद की बात करें तो उसमें रीति नक्षन कहा गया है, जिसका मतलब है कि सत्य, अगर सत्य होगा तो मीडिया की भूमिका भी स्पष्ट है, जो कुछ है वो हम समाज के सामने, पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने रखें। तो हमने बहुत पहले ऋग्वेद में ये बात कह दी है और इसके लिए ये कह सकते हैं कि आज के समय में मीडिया के पास कलम की ताकत है, कैमरे की दृष्टि है और आपकी स्क्रीन की पहुंच है। और गीता में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुर्देक करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्याय यावसनम चय वांगमय तप उच्चयते। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को व्याकुल न करे और ट्रुथ सत्य पर आधारित हो। एक महत्वपूर्ण बात, माननीय राज्यपाल महोदय जी भी यहाँ उपस्थित हैं और आप सब लोग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी के जितने मीडिया महासम्मेलन हुए हैं उसमें जो हमने संकल्प पारित किए हैं, जो हमने यहां विचार मंथन किया है और जो हमारे पास में है, मुझे ऐसा लगता है शांतनु भाई, करुणा भाई, कि अगर उसको व्यवस्थित रूप से प्रकाशित किया जाए, सरकार को दिया जाए, उससे अच्छी पत्रकारिता की आचार संहिता हो ही नहीं सकती। ये पत्रकारिता जगत के लिए एक संदेश है कि जो भी कुछ हम यहां संकल्प पारित करते हैं उसमें पूरी पत्रकारिता की आचार संहिता आती है। और क्योंकि समय कम है इसलिए मैं अपनी बात को दो लाइन में समाप्त करना चाहूंगा, खास करके पत्रकार बंधुओं की जिम्मेदारी के लिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश तो ये है ये सूरत बदलनी चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए, देश विश्व गुरु बनना चाहिए, समाज में एक अच्छा माहौल बने, जो ब्रह्मा कुमारी जी के जो प्रयास हैं उन सबको हम पूरे विश्व में फैलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।
कोशिश रहे सूरत बदलनी चाहिए, हंगामा मेरा मकसद नहीं। कितनी बड़ी बात कहकर, संदेश देकर आप हमारे बीच से गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं और मैं आमंत्रण दे रही हूँ उस महान शख्सियत को, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी को, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी। जोरदार तालियों के द्वारा हम आपका आह्वान कर रहे हैं। आप बाल्यकाल से ही संस्था से जुड़ी, मैं समझती हूँ लगभग 11 वर्ष की उम्र से आप संस्था के साथ जुड़ गईं और 16 वर्ष की आयु में आप समर्पित हो गईं। और साथ ही साथ आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका, कैरेबियन कंट्रीज, उनकी देखरेख संभालते हुए आप मुख्य प्रशासिका का पद भी संभाल रही हैं। और साथ ही मैं कहूंगी आप गहन विचारों की धनी हैं, आपके जीवन में गहराई है, आपके बोल में गहराई है, आप जिसको भी दृष्टि देती हैं प्यार से निहारती हैं और उसके अंदर आपके कहे हुए शब्द उतर जाते हैं। ये अतिशोक्ति नहीं होगी कहते हुए कि वो बचपन मैंने भी आपकी गोद में खेलकर वो प्यार लिया है। आपके लिए मैं एक बात कहूंगी, आपकी तरफ से आपके शब्दों के लिए, आध्यात्म का दीप जलाकर चलें, हर रोशनी हर दिल में रोशनी फैलाकर चलें, मीडिया हो आवाज सच्चाई की, समाज को सही राह दिखाकर चलें। और इन्हीं शब्दों से मैं आपको ये माइक समर्पित करती हूँ। आदरणीय मोहिनी दीदी, आप सबको जानकर खुशी होगी आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, अपने ही परिवार के मध्य हैं।
ओम शांति, ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति। हमारे भ्राता राजपाल जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनें और साथ साथ आप सभी श्रोतागण, हमारे साथी, जब बोलने का समय होता है और जब ऐसा विषय होता है तो बहुत तरह की स्मृति, बहुत तरह के विचार, जो जिस समय पर हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा जी उनके पास में आई तो वो कहने लगे कि मेरे को जर्नलिस्ट ब्रह्मा कुमारी चाहिए, मेरे को लॉयर ब्रह्मा कुमारी चाहिए। तो मैं पढ़ने के लिए गई जनरल, मैंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद जर्नलिज्म के लिए जब मैं गई, मैं दो, हम दो ही बहनें थे और 85 सब भाई थे। क्लासरूम में हम दोनों बहनें ऐसे एक साइड पर बैठे होते थे क्योंकि बहनों के लिए जर्नलिज्म उस समय कॉमन नहीं था। अच्छा लगा, पब्लिक रिलेशंस और कई तरह के जानकारी मिली। तो मुझे याद आ रहा था बाबा ने क्यों मुझे ये पढ़ाया। तो दो बातें हैं, एक होता है उस समय कि देखो, एक मीडिया का मतलब होता है कि प्रमोशन, और बाबा का जो ये था संकल्प कि ये शिक्षा जो है वो मीडिया, हर प्रकार के जो मीडिया है, उस समय तो सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, पर सबको ये संदेश मिले। तो टेलीविजन, रेडियो आदि में हम लोग शुरू शुरू में सब करते थे। फिर मैं 72 में पहले तो 70 से बहुत जगह कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनली जाना होता था, पर फिर 74 से मैं अभी करीब हम लोग 130 देशों में हैं, पर करीब 60-70 देशों में जाना हुआ। तो हमने ये देखा कि हम लोग मीडिया के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए या प्रचार चाहिए, पर हमारी अब ये भावना रही उस समय से कि सबको कैसे, जो आप सबके पास कभी तनाव होता है, टेंशन होती है, कभी एंग्जाइटी होती है, तो आप सबके कैसे मन शांत रहे। एक तो होता है गुड न्यूज देना, परंतु वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो जो आज बातें हो रही हैं, चाहे देश देश की, चाहे किसी भी तरह की, जो हिंसा है और स्वार्थ है, विश्वास की तो बात ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि होना, होनी तो पीस चाहिए, परंतु पीसेस होते जा रहे हैं। जब हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने तो करीब 140 देश थे, अभी 180 हैं। तो पीसेस होते गए, मतलब एक तरफ स्वतंत्रता भी है, दूसरी तरफ विभाजन भी बढ़ता ही गया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, जो हमने न्यूयॉर्क में शुरू किया, उसका नाम हमने रखा मीडिया के लिए इमेजेस एंड द वॉइसेस ऑफ होप। इमेजेस, कोई ऐसी तस्वीर दिखाइए, कोई ऐसा इवेंट दिखाइए, इमेजेस, क्योंकि मनुष्य ने एक बार जो चीज देख ली वो भूलती नहीं है, एक बार जो आवाज सुन ली वो कभी भूलती नहीं है। सो इमेजेस वॉइसेस ऑफ होप। तो मैं इसलिए सुना रही हूं कि हमारी भावना ये थी कि हम जो भी तरह के, जिस भी तरह की मीडिया के लोग हैं, उन सबको मेडिटेशन, ईश्वरीय ज्ञान, मन की शांति, वो संदेश दें। जैसे आप लोगों की जो अपनी व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली की लाइफ है, व्यवहारिक जीवन है, उसमें मन में शांति, सुख, आनंद भी रहे। क्योंकि कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट, मैं कई कंट्रीज में उनसे मिली, तो एक तो व्यक्ति को मुस्कुराना भूल गया था। तो हम लोग गए तो हम लोग, आपने देखा होगा, ब्रह्मा कुमारी, बहने भाई सब मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? आज के समाज और संसार की हालत को देख के नहीं, परंतु आज से 90 वर्ष पहले जब परमपिता परमात्मा, जो शांति के सागर, शांति के दाता, शांति की दुनिया के रचयिता हैं, उनके द्वारा हमें ये संदेश मिला कि हर मनुष्य में शांति उनका स्वधर्म है और दिव्यता उनका गुण है, अर्थात हम सभी आदि सनातन देवी देवता कुल के हैं। तो उन्होंने हमें ये बीज डाला कि विश्व परिवर्तन करना है, और जो विश्व हमें स्थापन करना है उसमें शांति, प्रेम, एकता, विश्वास, सब तरह के गुण हों। तो हम लोग, जो हमें बाबा ने ये दृश्य दिखाया या हम सबको ये विजन दिया, तब से हम लोग का मन से, वाणी से, कर्म से, न केवल अपनी व्यक्तिगत जीवन में इन बातों की धारणा, ईश्वरी ज्ञान अपने जीवन में गुणों के रूप में, शक्ति के रूप में धारण करना, परंतु दूसरों को भी ये संदेश देना, ये कार्य चलता रहा। बहुत सहज है, सबसे पहले तो कि हम सभी जो आत्माएं हैं, हमारा स्वधर्म है शांति। हम सबका स्वधर्म है शांति। तो अगर आप दिन में, हम लोग तो हर घंटे में करते हैं, दिन में कुछ बार भी एक दो मिनट के लिए रुक करके मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, ऐसे करके थोड़ा अभ्यास करें तो एक आपका स्वभाव बन जाएगा कि कितनी भी किसी भी तरह की बात सामने आए, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, इसका अगर आप सोच करेंगे। कल भी मेरे पास काफी पत्रकार आए मिलने के लिए, शांति की स्थापना में हम क्या सहयोग दे सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस में कहावत है कि वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, तो फिर मैं हम लोगों ने वहां पर एक स्लोगन बनाया है कि पीस ऑल्सो बिगिन्स विद द माइंड्स ऑफ पीपल। तो हमने एक मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का यूएन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, उस समय हमने यही कहा कि शांति अपने मन से शुरू होती है, माइंड बिगिन्स विथ योर ओन माइंड, और उसके लिए पहले अपना ज्ञान भी मिले, पर संकल्प रखिए कि मेरा स्वधर्म शांति है। तो आपके हर संकल्प की जो वाइब्रेशंस हैं, और फिर आपके बोल, आपका कर्म, आपका संबंध, आपका व्यवहार एक शांति का वातावरण बनाएगा। तो हम सब की जिम्मेवारी भी है और हम सब का ये स्वभाव भी है, क्या है वो, शांति। स्वयं के लिए शांति, समाज के लिए, परिवार के लिए, और विश्व में शांति हो, ऐसा बाबा ने हम सबको मन में दिया है। और हम 90 वर्ष होंगे अगले साल, यही संदेश सबको दे रहे हैं, और हमारी आप सभी के प्रति यही शुभ भावना है। आपका कार्य जो है ना, जो आज की अगर आप न्यूज देना शुरू करेंगे भारतवर्ष में, लेकिन आप अन्य देशों में भी देखिए, रोज आज टैरिफ की न्यूज है, आज ये न्यूज है, तो मन में हलचल तो होती है, परंतु अपने मन को अचल बनाए, अडोल बनाए, और सदा एक शांत स्वभाव में, जिससे आपको आपके जीवन में उसका प्रभाव ना हो। तो इसलिए परमात्मा का हम सभी के प्रति ये संदेश है, इसलिए हम हमेशा शुरू में भी कहते हैं ओम शांति, और हम अंत में भी कहते हैं ओम शांति। तो इसलिए शांति हम सबका स्वधर्म है, हमारे पिता शांति के सागर है, और हम सभी को अपने संकल्पों से, अपने बोल से और अपने कर्म से शांति का ही संदेश देना है, वातावरण बनाना है, और ये 100% अपने मन में संकल्प रखे कि विश्व शांति जरूर होगी, सारे संसार में, ये सारे यूनिवर्स में सबको शांति होगी, और हम सभी एक दिन शांति के संसार में होंगे। ओम शांति।
इतनी सुंदर उम्मीद।
मैं यही चाहती हूँ कि सिर्फ एक मिनट के लिए हम लोग सभी शांति में बैठेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर, शांति की दुनिया की रचयिता, परमपिता परमात्मा की संतान। सदा शांति के संकल्प, शांति का वार्तालाप, शांति के स्वधर्म में। दिन में कई बार थोड़े से संकल्प शांति के, जिसकी वाइब्रेशंस शांति का संदेश सब तक पहुंचे। ओम शांति।
अपने मन को शांति से भर लें। ये शांति की ऊर्जा, ये शांति के प्रकंपन वाइब्रेशंस आपकी कलम में भी शक्ति भरेगी और समाज में भी शक्ति देगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हैं और हमारे राज्य के प्रथम नागरिक राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री हरिभाव बागड़े जी, तालियां। आप हमारे मध्य हैं और आपके बारे में कुछ भी कहना, एक सूर्य के आगे दीप जगाना होगा। आप यूं तो कृषक परिवार से हैं, लेकिन आपके अंदर सरलता जो मैंने देखी है, जो सत्यता को, भाव को महसूस किया है, बहुत गहराई है आपके अंदर। आप वर्तमान में ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ राजस्थान आप राज्यपाल हैं, चेयरपर्सन ऑफ राज्य सैनिक बोर्ड, चेयरपर्सन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी अमलगा मेडिट फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ राजस्थान, चेयरपर्सन ऑफ वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर, पैट्रन स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान, प्रेसिडेंट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच और चांसलर ऑफ अनेकानेक राजस्थान यूनिवर्सिटी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जोधपुर, उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, ऑल ओवर राजस्थान, आप सभी यूनिवर्सिटीज के यूं कहूं चांसलर हैं। और जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, राजस्थान के तो क्या, लेकिन आप राजनीतिक कैरियर में भी आप बहुत अपनी पैंट रखते हैं। विधायक पद पे आप 6 बार रहे हैं, मंत्री पद पर आपने बहुत सा कार्य किया है, विधानसभा अध्यक्ष भी आप रहे, और अब मैं माइक दे रही हूँ भ्राता राज्यपाल, माननीय श्री राज्यपाल महोदय।
मंच पर उपस्थित राजयोगिनी परमादरणीय ब्रह्म कुमारी मोहिनी दीदी जी, राजयोगी ब्रह्म कुमार करुण भाई जी, ब्रह्म कुमारी चंद्रकला दीदी जी, ब्रह्म कुमार संतनु भाई जी, प्राध्यापक डॉक्टर मानसिंह जी परमार, डॉक्टर एस शास्त्री जी, डॉक्टर अजीत पाठक जी, श्रीमती अल्पा चौधरी जी जिलाधिकारी, प्राध्यापक संजय जी द्विवेदी, ब्रह्म कुमारी सरला बहन, समाज के शांति, एकता और विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया के सभी बंधु, नेशनल मीडिया के कॉन्फ्रेंस के 2025 में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से आए सभी मीडिया बंधु, छायाचित्रकार, इनका मैं राजस्थान की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपको सबको पता है कि ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी के साथ यहां उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहां एक जो नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये समाज में शांति, एकता और विश्वास बनाए रखने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं। मैं ये मानता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए है, वो लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसे सदा हरा रखने का कार्य करता है। लोकतंत्र हमारे देश में बहुत सालों से हमारे भारत के लोगों के रक्त में ही लोकतंत्र है। मुझे याद है, मैं पढ़ा भी, चंद्रगुप्त का राज था, आचार्य जी वहां काम करते थे और उसी समय पाटना में, वो पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र में नगर पंचायत थी और वो उसके 30 मेंबर थे, वो भी चुन के आते थे और उनकी 5 कमिटियां भी बनाई थी, फिर एक आरोग्य की होगी, स्वच्छता की होगी, समाज के लोगों की होगी, ऐसी ऐसी कमिटियां भी बनाई थी। ये मैं पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके हिंदी आवृत्ति में पढ़ा। इसका मतलब पंडित जी ने भी छापा है अपने देश के पंतप्रधान, तो कहीं ना कहीं तो उनको भी कोई ना कोई किताब में इसकी मालूमात उन्होंने पढ़ी होगी। तो इतने सालों से अपने पास लोकतंत्र है, पहले कुछ साल 1200 साल लोकतंत्र नहीं था, लेकिन अभी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से लोग चुनकर आते हैं और जो चुनकर आते हैं उसका प्रचार प्रसार देखा तो हमें लगता है कि जाति के आधार पर नहीं तो विचार और देश हित के आधार पर चुनाव लड़े और इसी से लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। विचारों और देश के प्रति श्रद्धा से जो काम करेगा उसका सही लोकतंत्र लोक मानते हैं। मीडिया वालों ने तो इस पर ज्यादा फोकस भी करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, राजयोग केंद्र की स्थापना करना, राजयोग शिक्षा और आत्मिक चेतना से ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, प्राचीन भारतीय संस्कृति ज्ञान और योग का प्रचार, ज्ञान प्रदत्त करने से चरित्र समाज मानव जीवन को बेहतर बनाने का जोर देने के साथ संग्रहों की संग्रहालय, किताबों के प्रदर्शनियां, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन, भाईचारों के समर्थन, साक्षरता बढ़ावा देता है। ये एक महत्वपूर्ण काम हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से चलता है और भी कुछ काम करते हैं, नशा मुक्ति हो, पर्यावरण जागरूकता हो, अंधविश्वास पर विश्वास न रखना, ये भी काम करते हैं। मुझे याद है, मैं पढ़ा है कि 1937 में इनकी स्थापना हुई और वो कराची में हुई, और कराची में जब हुई तो दादा लेखराज जी उनको ब्रह्मा बाबा ये अब कहते हैं और ब्रह्मा बाबा के नाम से वो सब परिचित है। उन्होंने वहां स्थापन की और स्वातंत्र के बाद एक दो तीन साल में उनको लगा कि आप पाकिस्तान में रहना ठीक नहीं, तो इधर वो पहले भी आते थे। उनका जो हीरे का व्यापार था और इसीलिए इनके यहां उदयपुर के महाराजा के तरफ भी आते थे, पहले भी आते थे, इसीलिए सब परिसर जो है ये उनको मालूम था। फिर उन्होंने ये सोचा कि अपन भारत में जाएंगे, भारत में कहां जाएंगे, तो उनको लगा कि ये तो गुजरात से नजदीक है और उनके सभी जो ब्रह्म कुमारी थी वो सबकी सब यहां आई। अभी उन्हीं का जो आई थी उधर से वो कोई नहीं रही, हमारी मोहिनी देवी भी यहां की है और यहां का उन्होंने काम किया। और ऐसे ब्रह्म कुमारी बहुत काम करते हैं, हर गांव में जाते हैं, जहां जहां उनका राज हो केंद्र है वहां लोगों को, महिला को विशेषता, वो अच्छा रहने का, शांति से रहने का या उनके जीवन में तरक्की हो, ऐसी बातें उनको बताकर अपने इस पे जोड़ी जाती है। और एक विश्व में महिलाओं का इतना बड़ा संगठन और कहीं नहीं, वो केवल प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का है। दूसरा कौन सा विश्व में इतना बड़ा संगठन नहीं है महिलाओं का, ये भी आप जानते हैं। और इनकी जो संस्कृति अपनी, वो संस्कृति भी बचाने का काम कर रही, तपश्चर्या, योगा, आयुर्वेद, वेद, त्याग, समर्पण, त्योहार, विवाह पद्धति, ब्रह्मचर्य, गुरुकुल शिक्षा, ये मां बाप की सेवा करना, गुरु के प्रति सदा सेवा तत्पर रहना, आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक शूरवीर, पवित्रता, पतिव्रता, रामायण महाभारत, तो इनका भी ध्यान रखना, ये भी अपनी संस्कृति है। अपनी संस्कृति भारत की विश्व में सबसे पहली संस्कृति है, कितने हजारों साल की संस्कृति है। और ये संस्कृति अपनी बिगाड़ने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की, हजार साल से ज्यादा लोगों ने ये अपनी संस्कृति छिन्न विच्छिन्न करने का, उसको तोड़ मोड़ करने का प्रयास किया। मुझे याद है कि भारत का जो गवर्नर थे एक बार वो लॉर्ड थॉमस मैकैलो, तो उन्होंने 2 फरवरी 1835 में सभी गवर्नर के सामने एक भाषण दिया और वो भाषण में कहा कि भारत को अपन ज्यादा दिन अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। क्यों? तर उनके पास नैतिकता बहुत है, प्रामाणिकपना, ईमानदारी है, एक दूसरों को मदद करने की इच्छा शक्ति है और मैं सभी और घुमा हिंदुस्तान में, मुझे कहीं चोर मिला नहीं, मुझे कहीं भीख मांगने वाला मिला नहीं। इनको जब गुलाम करना है तो उनकी संस्कृति जड़ों से उखाड़ना पड़ेगी और उनकी शिक्षा पद्धति बदलना पड़ेगी और फिर शिक्षा पद्धति का जो कानून बना है वो 1835 में बना और 1837 में हमारे यहां लागू हुआ और जब से वही शिक्षा पद्धति चालू थी ये बदली नहीं गई थी। 1986 में थोड़ा सा बदल हुआ, अभी 2020 में पूरी की पूरी बदल दी और इस कारण हमारे देश में जो हमारी संस्कृति उखाड़ने का, हमारे जो गुरुकुल है वो बंद करने का और अंग्रेज की पद्धति लाने का जो प्रयास हुआ, इसके कारण हमारा सब भूल गए। हमारा इतिहास हमें मालूम ही नहीं रहा। हमारे इधर इतने योगी लोग थे, बहुत सारे महर्षि थे, लेकिन उनका लिखाण हमें पढ़ने की जरूरत है, बाहर के लोगों ने पढ़ा। नालंदा विश्वविद्यालय में जब विश्व में 6 विश्वविद्यालय थे विश्व में 6, तब हमारे भारत में 2 थे। भारत में 2 थे, एक तक्षशिला था, नालंदा भी था और नालंदा तो हमारे तो बद्रुद्दीन खिलजी ने जला दिया। क्यों जला दिया? तो बोला ये इतनी अच्छी विद्या हमारे देश पे नहीं, ये देश पे नहीं रहना करके वो ग्रंथालय जला दिया। वो 3 माह तक जलते रहा, ये जानबूझकर किया। और इसीलिए ये तो आया और भी कुछ है हमारे यहाँ, उन्होंने बहुत सारे यहाँ कानून बनाया, जिजिया कर लगाया तो बोले तुम जिजिया कर भरो नहीं धर्मांतर करो, ये भी किया। ये सब संस्कृति का हमें नष्ट करने की उन्होंने बहुत साल कोशिश की, लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट हुई नहीं, अभी तेजी से बढ़ रही है। हम क्यों? तो हमारे यहाँ बहुत सारे भारत का विचार करने वाले, बहुत सारे हमारे संत महात्मे, जो हमारे दादाजी हो गए कि उन्होंने भारत की संस्कृति बढ़ाने का काम किया, रखने का काम किया, हमारे सनवार भी रखने का काम किया, इसीलिए हमारी संस्कृति बिगड़ी नहीं। और आज अपने को वही करना है कि हमारा देश अच्छा हो, मजबूत हो। आपने सभी ने कहा है कि हम शांति से रहे, हमें तो हमारा पूरा इतिहास मालूम है, हमें किसी पे आक्रमण नहीं किया, सर्वधर्म के लोगों को हम मानते। मुझे एक भी ऐसा जो सनातन धर्म मानता है उसके कोई प्रवक्ता ने, कोई प्रवचनकारों ने, कई कीर्तनकारों ने, कई भाष्यकारों ने दूसरे धर्म को हमने कभी नाम रखा नहीं, कभी नहीं रखा। ये धर्म अच्छा नहीं, वो धर्म अच्छा नहीं, ऐसा कभी बोला नहीं। लेकिन सनातन धर्म बहुत पिछड़ा है, सनातन धर्म बहुत पिछड़ा है। किसी ने बोला सनातन धर्म एक कोरोना भी है, ये भी बोला। तो हम किसी को नाम रखते नहीं, हमें नाम रखा जाता है। हम शांति से रहते करके, शांति से रहते करके उनको मालूम है ये लोग शांत है, दो थप्पड़ मारी तो भी गप बैठेंगे। लेकिन आप वो दिन नहीं रहे, आज वो दिन नहीं रहे। हम अभी सशक्त हो रहे, मजबूत हो रहे, और किसी ने हमारी शांति बिगाड़ने का कोशिश की। हमारी शांति बिगाड़ने का और हमारी शांति का भंग करने की किसी कोशिश किया, तो उसको भी छोड़ना नहीं। ये बात हमें ध्यान रखना होगा, ये बात भी हमें ध्यान रखना होगा। हम नहीं करेंगे किसी के शांति भंग, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन हमें कोई बुरा बोला तो हम क्यों सहन करना है? इतने साल सहन करते हुए आए करके इतना विच्छेद हुआ। प्राचीन भारत तो बहुत बड़ा देश था। पंडित जी ने और एक बार लिखी है उनके किताब में, वो मैक्स मुलर नाम का एक जर्मन का इतिहासकार था, मैक्स मुलर, और बहुत बड़ा इतिहासकार था, कवि था, लेखक था, सब था। उसी का एक भाष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके किताब में लिखा है, और वो है कि हमें आश्चर्य होता है, भारत में दो किताब ऐसे हैं कि हजारों साल का वो किताबों में लोगों की श्रद्धा है, लोगों को उसको हर साल भूलते नहीं, हर साल वो भूलते नहीं। ऐसे दो किताबें, एक का नाम रामायण, दूसरे का नाम महाभारत है, अभी भी भूलते नहीं लोग, चालू चे। ये मैक्स मुलर ने लिखा और पंडित जी ने उनके किताब में लिखा है। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते, हिंदी आवृत्ति में मैं पढ़ा है, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे ब्रह्म कुमारी जी ने जो त्याग किया, तपश्चर्या की, और त्याग और तपश्चर्या के साथ साथ समर्पण किया। ये समर्पण है, किसी को अपना मोह होता नहीं। पढ़े लिखे लोग, हमारी भगिनी बहुत पढ़ी भी है, उन्होंने भी समर्पण कर दिया। ये किसके लिए समर्पण है? हमारे देश धर्म के लिए और हमारे समाज के लिए उन्होंने समर्पण किया है। और गांव गांव भटकती है, इधर उधर घूमती है, देश और समाज के लिए, देश और समाज के लिए। और ऐसी समाज के लिए घूमना ये बहुत बड़ी बात है। और तो हमारे यहां भी मीडिया का बात चल रही है, मीडिया तो मुख्य बहुत पहलू होते हैं मीडिया के। भाई थोड़ी देर में मैं ये समाप्त करूंगा। प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्र होता है, पत्रिका होती है, किताब होते है, ब्रोशर होता है, प्रचार का साहित्य होता है, उसको प्रिंट मीडिया, और प्रसारण मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया जो होता है वो टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, फिल्में होती है, और इसमें और डिजिटल न्यूज मीडिया भी है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्ट्रीमिंग है, सेवाएं है। और अभी सोशल मीडिया की बात कहीं न की, वो तो बहुत चल रहा है, पर कार्य सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना, मनोरंजन करना, और जनमत को ज्ञान देना ये उनका हेतु है, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या? इतना होता क्या? ज्यादा होता है हमारे, और उसमें तो कृत्रिम बुद्धि भी आ गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या क्या चित्र निकालते और क्या क्या वो मीडिया में डालते, और इसीलिए हमारे यहाँ तो हमारा मनोरंजन तो होता है, पर मनोरंजन का करते करते हम हमारा वैयक्तिक द्वेष पसराने का भी काम करता है, वैयक्तिक द्वेष पसराने का भी काम होता है। और ये परदेश के लोगों के सामने हमारे देश के हमें संविधान में हमको हमारा बोलने का हक दिया है, हमारे विचार रखने का हक दिया है, हमें लिखने का हक दिया है संविधान ने देना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, गाली गलौज करें, किसी का नामर्द करें, किसी का अपमान करें, किसी को हम बहुत सारे उसके फैमिली का भी कुछ ना कुछ करें, ये कोई संविधान में नहीं है, कोई संविधान में नहीं। हाँ, तुमको लिखो, तुम बोलो, ये तुमको अधिकार जरूर है, लेकिन दूसरों का अपमान करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कोई हमारे संविधान में कोई कलम में नहीं। तुम बोलते हैं तो कुछ भी बोलो, लिखते हैं तो कुछ भी बोलो, गाली गलौज देना है तो दो, ये बात है संविधान में? संविधान में है कि ये नहीं है? जो रोज रोज संविधान बताते वही भी ये करते, ये वही ये करते होगे, तो ध्यान में आना संविधान में क्या है और अपन क्या कर रहे हो, ये बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। और समझदार उन्हीं को बोलते हैं, जो ये देखता उसको समझदार बोलते हैं, और जो देखता नहीं कुछ भी बोलता उसको वह समझदार बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और परदेश के लोगों के सामने हमारे देश की, हमारे देश का भी अपमान करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई हमारे देश का हित का नहीं है। हमारे देश का हित है कि हमारी जो जो अच्छी बातें हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, परिवार में कुछ बुरा हुआ तो फलक लगाते क्या? लगाते? ये मेरे परिवार में बुरा हुआ, अरे झांक के रखते ना भाई, जो अच्छा है वही बोलते ना। फिर देश के बारे में क्यों नहीं बोलना? देश के बारे में भी कुछ गलत बोलते, हमारे जो सैनिक है कि जो बाउंड्री पे रहते हैं दिन रात रहते, अरे राजस्थान की बाउंड्री है जैसलमेर के जिले में बाड़मेर के, वहां 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो भी वहां खड़ा रहता है वो सैनिक, 52 डिग्री टेम्परेचर। वो बोलते लोग वहां हमको पापड़ भाजना है तो चूल्हे की जरूरत नहीं, हम मिट्टी पे भाज लेते हैं, इतना वहां गर्मी होती है। और ऐसे गर्मी में रहते प्राण की बाजी लगाते और देश की सेवा करते, देश के सीमा का संरक्षण करते, उनके बारे में आप भी बोलते कुछ, ये क्या अच्छी बात नहीं है? ये देश का हित नहीं, अहित की भाषा बंद करो, यही मैं आपसे विनती करता हूं। और ये बोलता कि अपने को जो हमारा जो संस्कृत है वो हमारे जो किताब है पूर्वपार चले आए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्या भी हमारे बहुत सारे लोगों को भी ये पढ़ता नहीं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि मैं इजराइल गया था, तो इज़राइल में प्रिंट मीडिया में सबसे पहले पेज पे कौन सी न्यूज आती है, तो वो बोले कि वो किसी कास्ट कार्ड ने एकादा संशोधन किया, किसी बच्चे ने एकादा संशोधन किया, तो उसकी मालूमात पहले फ्रंट पर जाती है और बाकी जो एक्सीडेंट है, बलात्कार है, खून खराबी है, वो बात के बीच में के पेपर पन्ने पे आती है। और अपने इधर बहुत सारे, हमारा देश दुनिया में दूध के बारे में नंबर वन है, दूध के बारे में हमें मालूम ही नहीं। हमारा देश गेहूं के बारे में नंबर दो है, हमारा देश मक्का के बारे में पांचवा नंबर का है, और हमारा इतना उत्पादन है, इतना उत्पादन है, तो दुनिया अभी इतनी लोक संख्या बढ़ी तो हमें अनाज की कमतरता नहीं। स्वतंत्र हुए थे जब अनाज की कमतरता थी, क्योंकि उन्होंने बोला था अंग्रेजों ने कि इनकी संस्कृति उखाड़ो, जड़ से उखाड़ो, या उनको ऐसा बनाओ ये भीख मांगेंगे, ये चोरिया करेंगे, ये भी उनकी नीति थी, और ये नीति सही हो गई। सही हो गई महात्मा गांधी जी का एक भाषण है, महात्मा गांधी जी का एक भाषण है 23 मार्च 1922 में अहमदाबाद में भाषण दिया, और उन्होंने भाषण दिया कि अंग्रेजों ने हमको लूट लिया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, दुष्काल आया तो भी कुछ धान्य हमारे पास नहीं, हम भूखे मर रहे, हमारे बहुत से लोग भूखे मर रहे। और ये महात्मा गांधी जी का भाषण है 23 मार्च 1922 का। एक तरफ वो मैकॉले बोलता है कि भारत में बहुत समृद्धि है, वहां भीख मांगते नहीं, चोरी करते नहीं। उसके बाद 22 तक, 1835 से 1922 तक हमारे देश की क्या स्थिति करके छोड़ी, ये भी आपको लोगों को बताना होगा। और बताइए, हम सब कार्य करिए, देश के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा व्यवहार ये ठीक रहे, देश की उन्नति का विचार हमेशा करे। हम बड़े हिंद के योगी, हम बने हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, धरेंगे ध्यान भारत का। धन्यवाद।
बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने तो बिल्कुल इस तरह से अपनी भावनाओं को हमारे मध्य रखा है जैसे सचमुच बच्चों को कोई पिता घर में समझाता है, किस बात का ध्यान रखना है, किस बात का नहीं रखना है, किस बात को बोलना है, किस बात को नहीं बोलना है। छोटी छोटी बातें आज हमने आपसे सीख के रूप में, शिक्षा के रूप में मिली हैं। तो मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं ये मुझे समझ नहीं आता। हम भारत का ध्यान रखेंगे, यही हमारा शुक्रिया होगा। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे माननीय राज्यपाल से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच एक प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर आप हमारे आदरणीय मोहिनी दीदी जी, करुणा भाई जी और साथ ही साथ इनको प्रदान करेंगे। आपके साथ हमारे डॉक्टर दीपक हरके भी साथ देंगे। मेरा अनुरोध है आगे आएंगे, किताब सामने लाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। माननीय राज्यपाल महोदय,
आदरणीय मुख्य प्रशासिका मोहिनी दीदी जी को प्रदान करेंगे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। हम तालियों के द्वारा आपका साथ देते हैं और फिर राज्यपाल महोदय खाता करुणा जी को प्रदान करेंगे। आपका साथ दे रहे हैं दीपक हरके जी। और अब मेरा अनुरोध रहेगा हमारी मुख्य प्रशासिका मोहिनी दीदी जी से कि आप और भ्राता करुणा जी राज्यपाल महोदय का सम्मान करेंगे। बहनें आगे लेके आएंगी सम्मान के लिए। सामने आए बहनें और शॉल के द्वारा दीदी जी सम्मान करेंगे राज्यपाल महोदय का। करुणा भाई जी सम्मान कर रहे हैं राज्यपाल महोदय को, शाल पहना के सम्मानित कर रहे हैं। और शिव बाबा परम पिता परमात्मा शिव के स्मृति के लिए आदरणीय दीदी जी चिन्ह देकर सम्मानित कर रही हैं। ईश्वरीय भेंट प्रदान करेंगी आदरणीय दीदी जी। मंच पर विराजित करुणाबाई जी प्रदान कर रहे हैं ईश्वरीय स्मृति चिन्ह। नर को नारायण फिर से बनाना है, नारी को लक्ष्मी पुनः बनाना है। और आगे भी मंच को ईश्वरीय भेंट प्रदान की जा रही है आदरणीय दीदी जी परमार जी का अभिनंदन कर रहे हैं। हम तालियों के द्वारा साथ देते रहेंगे, ये साथ बना रहे तो बहुत सुंदर लगता है। सभी बैठे रहेंगे, सबसे अनुरोध है कोई भी हॉल अभी नहीं छोड़ेगा, सभी बैठे रहें। जो आपका स्थान है आप सब बैठे रहेंगे, प्रोग्राम अभी है। और जब हमारे बीच से राज्यपाल महोदय जाएंगे तो भी हॉल से कोई नहीं उठेगा, वक्तव्य भी चलेंगे, आप बैठे रहेंगे, कोई भी हॉल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करें, गेट्स बंद हैं इस समय। जल्दी जल्दी स्वागत का कार्य पूरा करेंगे, जल्दी जल्दी सामने लाएं। और अब हम खड़े हो जाएंगे नेशनल एंथम के लिए। सभी सीधे खड़े होंगे। सभी मंच पर भी रहेंगे, हमारे राज्यपाल महोदय हमारे बीच में से जाएंगे, कोई भी पीछे राज्यपाल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। कृपया अनुरोध है, पीछे से संभाल लेंगे, सागर साहब संभाल लेंगे आगे। कोई भी सभा से नहीं हिलेगा और मंच पर भी सभी बैठे रहेंगे। मैं अनुरोध करने जा रही हूँ बहन शारदा नाथ जी को, जो कि प्रोफेशनल सिंगर हैं, स्टेज प्रोग्रामर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैं, आए और अपना गीत हमारे बीच रखेंगे। आपका गीत रहेगा नहीं तुमसा कोई प्यारा जहां में। बहन आगे आए, जल्दी से आगे आए। शारदा नाथ जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जल्दी से आगे आएंगी।
ओम शांति।
सुंदर प्रस्तुति बहन शारदानाथ जी की, शुक्रिया बहुत बहुत। दीदी जी सम्मानित कर रही हैं। और अब मैं आगे बढ़ते हुए आह्वान कर रही हूँ डॉक्टर सोहिनी शास्त्री, आप प्रेसिडेंट अवार्ड विनिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, कोलकाता से पधारी हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, सहृदय की धनी हैं, कल थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बहुत प्यार से आप बातों को रखती हैं। आपसे अनुरोध है आए मंच पर अपनी बात चंद शब्दों में कहें।
Respected dignitaries, esteemed member of the Brahma Kumari Media Wing, distinguished guest and all the representatives present here. It is truly an honor for me to invite as a guest of honor at the Rashtriya Media Mahasanmelan at Shantivan Campus Abu Road. I extended my heartfelt gratitude to the Brahma Kumari Media Wing for the opportunities. About myself, as one of the top 5 astrologers in the world, number 1 astrologer in India, and the recipient of 3 times President Awards, I consider it a blessing to dedicate my work towards guiding people, recently receiving an appreciation letter from our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, has been one of the produced moments of my life, and I feel deeply humbled by his recognition of my efforts. The theme of the Sanmelan, the role of media in establishing peace, unity and trust in society, is of immense importance. I extend my heartfelt thanks to the more than 1,500 media representatives from the across country who have participated in this Maha Sanmelan. I sincerely appreciate all the journalists gathered here for such a noble cause. I truly hope that this conference will inspire the media to play an even greater role in supporting the global mission of Prajapita Brahma Kumari Isharya Vishwavidyalaya to establish peace. I am especially grateful to Shantanu Bhai Ji of the Media Wing, Kuruna Bhai Ji, Chief of Media, and respected Mohini Didi Ji, the Chief Administrator of this great organization, for giving me the privilege to be part of this historic Maha Sanmelan. Let us all move forward with the shared vision of peace, unity and harmony of the world. Thank you. Om Shanti. I am an astrologer and life coach. I would love to say something about astrology also. I will take just 2 minutes time. Astrology offers guidance by connecting human life with cosmic activities and actives. It helps people understand their strength, weakness and life patterns through planetary positions. Many use astrology for decision making in career, relationship, health, marriage and finances. It provides clarity during confusions, offering remedies to reduce negative planetary effects. Astrology also supports self-awareness and spiritual growth, allowing individuals to align with favorable cosmic energies by studying horoscope. One can prepare for challenges, utilize opportunities, and achieve balance in life. From an astrological perspective, it acts as a roadmap, bringing confidence, hope, and deeper connection with the universe divine plan. Thank you. Thank you all, Brahma Kumari. Om Shanti.
थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छा हमारे बीच में एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानकारी रखी और अपने भाव भी रखे. सभा से अनुरोध है कुछ देर और आप शांति बनाए रखेंगे, साथ देंगे, सहयोग देंगे. और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ डॉक्टर अजीत पाठक जी को, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर पास्ट 20 इयर्स एंड एक्स बोर्ड मेंबर इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस एसोसिएशन एंड द फर्स्ट एशियन टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल अलायंस ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट. आप दिल्ली से पधारे हैं. मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना भाव हमारे मध्य रखें. भ्राता अजीत पाठक जी.
मंच को नमन है, आदरणीय श्रोताओं को नमन है. आज हम सभी जिस छाया में यहाँ बैठे हैं, एक आध्यात्मिक संगठन है जो पूरे विश्व में शांति का पाठ पढ़ा रहा है. इनका मूल ध्येय शांति है जीवन में. और ऐसा संगठन यदि इतने सारे पत्रकारों को और जनसंपर्क कर्मियों को एक नई चेतना देने के लिए यह इकट्ठा करता है, तो इसका मतलब उस चेतना की बहुत ज्यादा समाज को आवश्यकता है. और उन सभी प्रयासों में हम सार्थक भूमिका निभा पाए, ये हम सब के लिए जरूरी है. मैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. हमारा संगठन पिछले 66 वर्षों से देश के पूरे जनसंपर्क कर्मियों की सेवा कर रहा है. और हम न केवल जनसंपर्क बल्कि हमने जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे जुड़े हैं, और विगत वर्षों में लगातार हमने उस दिशा में काम किया है. मुझे ख्याल आया, मैं जब अपने कैरियर की शुरुआत की तो एज ए कार्टूनिस्ट मैंने शुरू किया काम. लगभग मैं 19 वर्ष का था और फॉर्चुनेटली मुझे राजस्थान के जो मूल अखबार हैं, प्रमुख अखबार हैं, वहां से शुरुआत मिली. और जब तक मैं 21 वर्ष का हुआ मेरे इतने कार्टून छपे हुए थे. जब मैं कार्टूनिंग करता था तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जब भी कार्टूनिंग करो एक बात को ध्यान में रखना, अपने जो मूल्य हैं, जो सत्यता है, उसको कभी मत छोड़ना. और शायद वही आगे जाके मेरा कैरियर बना. ही यूज टू से इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ इमेज इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. हम सभी चाहे पत्रकारिता में हो चाहे जनसंपर्क में हो, हमारा दायित्व है अपने संगठन की छवि बनाना, देश की छवि बनाना. और जहां तक इस संस्था का सवाल है, मूल्यों का जीवन हो और जीवन का मूल्य हो, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है. एक प्रकाश बिंदु है जो निराकार है, एक प्रकाश बिंदु है जो निराकार है. परमपिता शिव हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का आधार है. मैं अपनी बात दो छोटी कविताओं के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा. जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं उन सबको मैंने पिरो करके एक छोटी कविता के माध्यम से पहले प्रस्तुत किया है. मैं चाहूंगा आप जुड़े मेरे साथ उस कविता से. सोचें, जो कुछ परिस्थिति पत्रकारिता की चल रही है, जो कुछ जनसंपर्क की चल रही है, जो कुछ मूल्यों में ह्रास हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे पारिवारिक स्तर पर, हमारे संबंधों के स्तर पर, उन सब में एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं. तो आइए, आज सत्य कुछ और है, आज सत्य कुछ और है, दिखे सत्य कुछ और, झूठ सच्चाई का मखौल उड़ा रहा, दुष्ट बने चित चोर. पत्रकार हर कोई बना एक मोबाइल को थाम, झूठी खबर बना लें पल में, करें छवि बदनाम. आज शरीर किसी का, लगा दें किसी का चेहरा, किस तरह से बचे आदमी, कैसे लगाए हर खिड़की पर पहरा। टीवी चैनल सब दिखला रहे झगड़े और फसाद, टीवी चैनल सब दिखला रहे सब झगड़े और फसाद, सत्य के पहरेदार बने हैं जो करते नित अपराध। अमृतकाल भारत में मना रहे गीत विजय के गाएं, अमृतकाल भारत में मना रहे गीत विजय के गाएं, देश तोड़ने का शौक है जिनको, हम उन पर लगाम लगाएं। पुरवाई को चिड़ा रहे अब आंधी और तूफान, पुरवाई को चिड़ा रहे अब आंधी और तूफान, धोखेबाज आज नकाब लगाए बने बड़े हैं महान। जनसंपर्क के नाम पर झूठी खबर छपवाएं, जब मूल्यों के ह्रास की बात होती है तो पत्रकारिता जहां दोषी होता है वहां जनसंपर्क भी उतना ही दोषी होता है। जनसंपर्क के नाम पर झूठी खबर छपवाएं, पत्रकारिता नहीं अब समाज की सेवा, बस धन लाभ कमाएं। कुर्बानी करें जाबाज देश के वो फिर भी मांगे सबूत, कुर्बानी करें जाबाज देश के वो फिर भी मांगे सबूत, मां भारती तेरे भाग्य में कुछ ऐसे भी कपूत। गौरवमयी संस्कृति ज्ञान भंडार है, गौरवमयी संस्कृति ज्ञान भंडार है, राम है हर प्रेरणा आधार, भारत का नेतृत्व विश्व है मान रहा, विश्व प्रणेता लेका आकार। एक राष्ट्र है एक प्राण है एक ही स्वर हमारे, एक राष्ट्र है एक प्राण है एक ही स्वर हमारे, भारत माँ की जय हो अब हर आवाज पुकारे, अब हर आवाज पुकारे। एक और छोटी रचना है जिसमें फिर मैं चाहूंगा जुड़े मेरे साथ, आप सभी ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार महसूस किया है कि सनातन क्या है। सनातन वो है जो निरंतर है, चिरंतन काल से चलता चला आया है, उसी को मैं किस दृष्टि से देखता हूं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि चिरकाल से जो चलता चला आया है, चिरकाल से जो चलता चला आया है उसे कोई भी आक्रांता अब तक मिटा नहीं पाया है, वो अविरल है, वो सतत है, दुश्मनी की मन में न कोई अगन है, यही तो सनातन है, यही तो सनातन है। ऐसा नहीं कोई देश है दूजा, ऐसा नहीं कोई देश है दूजा जहां करें पक्षी और वृक्ष की पूजा, प्रकृति की ईश्वरीय उपासना, ऐसे समर्पित जिनके मन है, यही तो सनातन है। हर एक के लिए प्रार्थना, हर एक के लिए प्रार्थना शुभ, सबको मनोकामना, सबके स्वागत को आतुर, हर घर और आंगन है, यही तो सनातन है। नहीं स्वार्थ नहीं संकीर्ण विचार हैं, विश्व कल्याण ही जिनके आधार हैं, वसुधैव कुटुंबकम आत्मा में बसता, मानवीय मूल ही जिनके भजन हैं, ये ही तो सनातन है। थामे एक दूजे का हाथ, कुंभ स्नान वो करें साथ साथ, एक स्वर एक वाणी शुभ ये आयोजन है, ये ही तो सनातन है। सबकी खुशियों में शामिल हैं हम, औरों के गम हमारे गम, देखकर किसी दूजे का दर्द आंसू से भीग जाएं, इनके दामन है, ये ही तो सनातन है, ये ही तो सनातन है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
कविता के माध्यम से बहुत गहरी बातें आपने कह दी। सनातन किसे कहें, आगे कैसे बढ़ें, बहुत सी बातें कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपको अंत की ओर ले चलती हूं और एक ही बात कहना चाहूंगी कि चलो खबरों में मोहब्बत के किस्से लिखें, अपनेपन के किस्से लिखें, इंसानियत के किस्से लिखें, तकरार से नहीं अब संवाद से दुनिया चले, तकरार से नहीं अब संवाद से दुनिया चले, दुनिया चुने शब्दों से शांति की इबारत लिखें, मीडिया को बदलाव की ताकत बनाएं, मीडिया को बदलाव की ताकत बनाएं। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, जिस दर पर आप आए हैं, जिस दर पर आप आए हैं, ये वो दर है जहां तकदीर बदल जाती है, ये वो दर है जहां तकदीर बदल जाती है। ईश्वरीय संघ में इतनी ताकत है जहां जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है, जहां जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है, तो आइए 3 दिन आप हमारे साथ साथ हैं, ये शांति की शक्ति को अपनाएंगे और अपने अंदर प्रभु प्रेम को आत्मसात करेंगे ताकि आपकी ताकत मल्टीफोल्ड हो जाए। तो चलिए अब हम कुछ क्षणों के लिए प्रभु स्मृति में बैठेंगे और आज के सत्र को 1 मिनट आपका और लेना चाहेंगे। हमारे मंच पर जो हमारे अतिथि बैठे हैं, वक्ताजन बैठे हैं, आपको ईश्वरीय भेंट प्रदान करेंगी हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी। जल्दी जल्दी आगे आएंगे, बहनों से अनुरोध है सौगात को लेकर के आएंगे। एक नन्हा सा दीपक सारा दिन रात जलता है, लड़ता है तूफान से, तो क्या हम इंसान अपने आप को सशक्त बनाने के लिए अपने कदम मजबूत नहीं रख सकते? सोचिएगा। हम तालियों के द्वारा सभी को सम्मान अपने स्थान से देंगे। दीदी जी सबका सम्मान कर रही है। सोहिनी जी आगे आए, जल्दी जल्दी आए। शारदा जी भी अपना सौगात लेंगे। शारदा जी मेरी आवाज सुन रही हूँ तो मंच पर अपना ईश्वरीय स्वागत ग्रहण करें। हम जहां बैठे हैं स्थिर रहेंगे, 2 मिनट प्रभु स्मृति में बैठकर सत्र को समाप्त करते हैं।
आओ आओ सभी
सभी प्रेम से बोले ओम शांति। ओम शांति।